प्राथमिक समूह प्राइमरी ग्रुप। चार्ल्स कूले ने अपनी पुस्तक सोशियल ऑर्गेनाइजेशन में सन 1909 में प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया। प्राथमिक समूह को परिभाषित करते हुए चार्ल्स कूले ने लिखा है कि प्राथमिक समूहों से मेरा तात्पर्य ऐसे समूहों से है जिनकी विशेषता आमने सामने के घनिष्ठ साहचर्य और सहयोग के रूप में व्यक्त होती है। वे अनेक अर्थों में प्राथमिक है, परंतु मुख्यतः इस बात में कि वे व्यक्ति की सामाजिक प्रकृति और आदर्शों के निर्माण में मौलिक है। घनिष्ठ साहचर्य का परिणाम यह होता है कि एक सामान्य संपूर्णता में वैयक्तिकताओं का इस प्रकार एकीकरण हो जाता है जिससे प्रायः कई प्रयोजनों के लिए व्यक्ति का अपना अहम समूह का सामान्य जीवन और उद्देश्य बन जाता है। इस संपूर्णता के वर्णन के लिए अति सरल विधि हम कहना है, क्योंकि यह अपने में उस प्रकार की सहानुभूति और पारस्परिक एकात्मीकरण को समाविष्ट करता है जिसके लिए हम ही स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। कूले की उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि प्राथमिक समूहों में आमने सामने के संबंधों तथा हम की भावना का पाया जाना आवश्यक है। किंग्सले डेविस का कहना है कि कई बार आमने सामने के संबंधों के पाए जाने के बाद भी प्राथमिक संबंधों का निर्माण नहीं हो पाता। आपने बतलाया है कि एक सिपाही अपने अफसर के आगे झुकता है, उसे सलाम करता है। इनके बीच आमने सामने के संबंध होते हुए भी ये संबंध प्राथमिक संबंध नहीं होकर यांत्रिक संबंध हैं। ऐसी ही आलोचना फेरिस ने भी की है। वे कहते हैं कि न्यायालय में अपराधी, न्यायाधीश, वकील एवं गवाह आमने सामने होते हैं, किंतु उन्हें प्राथमिकी संबंधी नहीं कहा जा सकता। डेविस का मत है कि हम की भावना तो बड़े बड़े द्वितीयक समूहों में पाई जाती है, अतः इन विशेषताओं के आधार पर किसी समूह को प्राथमिक समूह कैसे कहा जा सकता है। यहाँ हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि कूले ने प्राथमिक समूह की इन दो विशेषताओं के अलावा अन्य विशेषताओं पर भी जोर दिया है। उदाहरण के रूप में आपने संबंधों की संपूर्णता, संबंधों की अवधि, संबंधों की घनिष्ठता तथा वैयक्तिक संबंधों को प्राथमिक समूहों की आवश्यक विशेषताओं के रूप में माना है। यहाँ कोजर एवं रोजनबर्ग का कथन बहुत महत्वपूर्ण है। इन विद्वानों ने बतलाया है कि आमने सामने के संबंध तथा लघु आकार आदि प्राथमिक समूह की संयोगवश विशेषताएं हैं। सामाजिक संबंधों का घनिष्ठ होना एक ऐसी आधारभूत विशेषता है जिसके बिना प्राथमिक समूह का निर्माण हो ही नहीं सकता। लुंडबर्ग प्राथमिक समूह को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि प्राथमिक समूह का तात्पर्य दो या दो से अधिक ऐसे व्यक्तियों से है जो घनिष्ठ सहभागी और वैयक्तिक ढंग से एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। फेयर चाइल्ड लिखते हैं कि एक प्राथमिक समूह का जिसमें दो से लेकर 50 या 60 लोगों के, अर्थात एक छोटी संख्या के, जो अपेक्षाकृत अधिक लंबे समय तक चलने वाले आमने सामने के संबंधों में किसी एक उद्देश्य के लिए नहीं वरन केवल एक व्यक्ति के रूप में न कि किसी विशिष्ट कार्यकर्ताओं, प्रतिनिधियों या संगठनों के नियुक्ति के रूप में रखते हैं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किम्बाल यंग लिखते हैं कि प्राथमिक समूह में परस्पर घनिष्ठ आमने सामने के संपर्क होते हैं और सभी व्यक्ति समरूप कार्य करते हैं। ये ऐसे केंद्रबिंदु हैं जहाँ व्यक्ति का व्यक्तित्व विकसित होता है। ओलेक्स एंकल्स के अनुसार प्राथमिक समूहों के सदस्यों के संबंध भी प्राथमिक होते हैं, जिनमें व्यक्तियों में आमने सामने के संबंध होते हैं तथा सहयोग और सहवास की भावनाएं इतनी प्रबल होती हैं कि व्यक्तियों का अहम हम की भावना में बदल जाता है। प्राथमिक समूह के उदाहरण। कूले ने परिवार, क्रीड़ा समूह एवं पड़ोस को प्राथमिक समूह माना है। मैकाइवर व पेज ने परिवार, क्रीड़ा समूह, मित्र मंडली, गपशप समूह, साझेदारी, स्थानीय भाईचारा, अध्ययन समूह, गैंग, जनजाति परिषद आदि को इस श्रेणी में रखा है, तो डेविस ने परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, गांव तथा कार्य करने वाले समूह को। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि किसी समूह के प्राथमिक समूह कहलाने के लिए कुछ भौतिक एवं आंतरिक विशेषताओं का होना आवश्यक है। यहाँ सर्वप्रथम हम भौतिक विशेषताओं पर विचार करेंगे। प्राथमिक समूहों की भौतिक विशेषताएं। यद्यपि चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूह के लिए आमने सामने के संबंधों पर जोर दिया है, लेकिन आपने ऐसे संबंधों की विस्तृत विवेचना प्रस्तुत नहीं की है। प्रोफेसर किंग्सले डेविस ने प्राथमिक समूह के निर्माण के लिए तीन आवश्यक दशाओं का उल्लेख किया है जो अग्रलिखित हैं। नंबर एक, शारीरिक समीपता। प्राथमिक समूह के लिए डेविस शारीरिक समीपता को महत्व देते हैं ताकि व्यक्तियों में घनिष्ठ संबंध स्थापित हो सके। व्यक्ति के एक दूसरे के निकट होने, साथ साथ उठने बैठने, खाने पीने, साथ साथ पढ़ने तथा बातचीत करने से उनमें विचार तथा भावनाओं का सरलता से आदान प्रदान हो पाता है। निकट संपर्क से व्यक्तियों में परिचय बढ़ता है तथा एक दूसरे के प्रति आदर, सहानुभूति एवं सहयोग उत्पन्न होते हैं। नंबर दो, समूह का लघु आकार, स्मॉल साइज ऑफ द ग्रुप। समूह जितना छोटा होगा, सदस्यों में उतनी ही अधिक मात्रा में निकटता और घनिष्ठता होगी। यदि समूह का आकार बड़ा है तो उसके सभी सदस्य एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे, उनमें अंतः क्रिया की मात्रा कम होगी। समूह के छोटे आकार का होने से ही सदस्य एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जान सकते हैं, समूह की गतिविधियों में सक्रिय रूप से सम्मिलित हो सकते हैं और सदस्यों में घनिष्ठता विकसित हो सकती है। नंबर तीन, संबंधों की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ द रिलेशनशिप। संबंधों की अवधि का घनिष्ठता के साथ सीधा संबंध पाया जाता है। संबंधों का काल जितना लंबा होगा, साधारणतः उतनी ही अधिक मात्रा में घनिष्ठता के बढ़ने की संभावना रहती है। संबंधों में घनिष्ठता का उतना होना प्राथमिक संबंधों की स्थापना के लिए आवश्यक है। निरंतर व्यवहारों से ही सदस्यों में एक दूसरे के प्रति विश्वास और आत्मीयता के भाव पैदा होते हैं, जो संबंधों में घनिष्ठता के लिए जरूरी है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्राथमिक समूह के लिए शारीरिक समीपता, समूह का छोटा आकार तथा संबंधों की लंबी अवधि का होना आवश्यक है। इस संबंध में डेविस ने लिखा है कि भौतिक निकटता, छोटा आकार और लंबी अवधि घनिष्ठ संबंधों के विकास के लिए अत्यधिक अनुकूल स्थितियां हैं। यह संभव है कि इनमें से कोई एक स्थिति अन्य दो की अनुपस्थिति में भी विद्यमान हो, लेकिन प्राथमिक समूह के विकास की सबसे अधिक अनुकूल अवस्था तभी प्रकट होती है जबकि ये तीनों दशाएं उच्च मात्रा में पाई जाती हों। प्राथमिक समूहों की आंतरिक विशेषताएं, संबंधों की प्रकृति। प्राथमिक समूहों की भौतिक विशेषताओं से संबंधों की कुछ ऐसी विशेषताएं प्रकट होती हैं जो प्राथमिक समूहों के लिए आवश्यक हैं। इन्हें मानसिक अथवा चरित्रगत विशेषताओं के नाम से भी पुकारा जाता है। यहाँ इन्हीं विशेषताओं का वर्णन किया जा रहा है। नंबर वन, उद्देश्यों की समानता। एक प्राथमिक समूह में सदस्यों की इच्छाएं तथा प्रवृत्तियां प्रायः समान होती हैं। इसी कारण वे साथ साथ रहते हुए भी समान उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं। वे संसार को एक ही दृष्टि से देखते हैं। दो मित्रों के प्रायः एक से दृष्टिकोण पाए जाते हैं। प्राथमिक समूह में प्रत्येक सदस्य दूसरे के हित को ही अपना उद्देश्य बना लेते हैं। उदाहरण के रूप में माता पिता अपने बच्चे के सुख दुख को ही अपना सुख दुख मानते हैं। उद्देश्यों की समानता के कारण ही प्राथमिक समूह के सदस्यों में हम की भावना तीव्र होती है। यहाँ सदस्यों के व्यक्तित्व समूह में विलीन हो जाती है। नंबर दो, संबंध स्वयं साध्य होते हैं। प्राथमिक समूह में संबंध किसी स्वार्थ अथवा उद्देश्य की पूर्ति के साधन के रूप में नहीं होते। यहाँ संबंध स्वयं ही अपने आप में साध्य या लक्ष्य होते हैं। प्राथमिक समूह की सदस्यता इसलिए ग्रहण नहीं की जाती कि उससे किसी लाभ या स्वार्थ की पूर्ति होगी। ऐसे समूहों का उद्देश्य तो प्राथमिक संबंध स्थापित करना ही होता है। इस संबंध में डेविस ने लिखा है कि यह संबंध संविदा, आर्थिक लाभ अथवा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रभावित नहीं होते, बल्कि व्यक्तिगत, आत्मिक, भावनात्मक एवं अपने आप में पूर्ण होते हैं। नंबर तीन, संबंध वैयक्तिक होते हैं। प्राथमिक समूहों में पाए जाने वाले संबंध वैयक्तिक प्रकार के होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि समूह में प्रत्येक व्यक्ति की अन्य लोगों में व्यक्तियों के रूप में रुचि होती है। माता पिता तथा बच्चों में, भाई बहन अथवा भाई बहन में तथा मित्रों में वैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं। ये संबंध हस्तांतरित नहीं किए जा सकते। मित्र अथवा माता पिता का स्थान कोई अन्य व्यक्ति नहीं ले सकता। किसी की मृत्यु हो जाने पर ऐसे संबंध स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। ऐसे संबंधों में एक के स्थान पर दूसरे का प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता। प्रोफेसर डेविस ने बतलाया है कि एक नवीन वैयक्तिक संबंध स्थापित किया जा सकता है, एक पुराना वैयक्तिक संबंध समाप्त किया जा सकता है। संभवतः यह चालक शक्ति जिसने संबंध को प्रारंभ करवाया था दूसरे को प्रेरणा दे सकती है, लेकिन एक ही संबंध में एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरे की प्रतिस्थापना नहीं की जा सकती। इसके विपरीत एक व्यक्ति से दूसरे को हस्तांतरित किया जा सकने वाला संबंध अवैयक्तिक संबंध है। एक स्कूल, दफ्तर अथवा फैक्ट्री में कार्य करने वाले के संबंध में